नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कल शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर दो दिन का ये शिखर सम्मेलन 22 नवंबर को शुरू हुआ था। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इटली की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इप्सा केवल तीन देशों का समूह नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों, तीन प्रमुख लोकतंत्रों और तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश सतत विकास के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग की सफल यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे न्यायमूर्ति भूषण आर गवई का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। राष्ट्रपति ने 30 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। वे इस पद पर लगभग 15 महीनों तक रहेंगे और 65 वर्ष की आयु होने पर 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस 3 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 1000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये विश्व स्तरीय वैज्ञानिक विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनेगा। सरकार द्वारा पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर 4 सरल और व्यापक श्रम संहिता लागू करने के फैसले को देश भर के श्रमिक समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक और राज्य अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उनकी मांग अब पूरी होगी।
स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, आज आप सबको पता है सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को राइड हेलिंग, ओला, उबर, रैपिडो, डिलीवरी, सिक्की, जोमैटो, अमेजोन, फ्लिपकार जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अर्बन कंपनी के वर्कर्स, स्पा, ब्यूटिशियन और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और जितने भी एप बेस्ड वर्कर्स है, अब तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज है। इमीडिएटली जो है हमारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो हमें मिलेंगे।
कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। इस नए वैश्विक खिताब को जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल, माहे तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।